الحمد لله وكفى، سلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم اپنے حضرت فیض الفقار احمد نقشبندی دامت برکات ان کی کتاب امور خانداری میں حسن انتظام میں سے پڑھ رہے ہیں، اور جو باب ہم اس میں آج کل پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، یعنی گھر کا انتظام، انتظام خانہ. تو اس میں صفائی ستھرائی وغیرہ کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس میں کچن کی صفائی اور ٹیبل وغیرہ کی صفائی، کارپیٹ کی صفائی، بیڈ روم کی صفائی، ڈریسر، باتھ روم کی صفائی اور روم فریشنر کا استعمال، کپڑوں کی صفائی، 10 منٹ کا ٹرپ، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ کے مکمل کر لیا تھا. 10 منٹ کا ٹرپ یعنی گھر کے ہر ہر کمرے کے اندر 10 10 منٹ لگائیں، اور نہیں بلکہ 2 2 منٹ لگائیں، اور جو چیزیں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہیں تو ان کو ان کی جگہ کے اوپر واپس رکھ دیں. اور ساتھ ساتھ جو ہیں جو گھر کے اندر دوسرے افراد ہیں، اگر وہ اپنی اس ایج کو پہنچ رہے ہیں تو ان کی جو ہے وہ ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں، تاکہ وہ خود بھی اپنی چیزوں کو جگہ پہ رکھنے کے عادی بننا شروع ہو جائیں. چھوٹے بچے بہت ہوتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو اگر ان کی تربیت کی جائے تو پھر وہ یہ کام کر لیتے ہیں. اگر ماں سارا کام خود کرتی رہے تو پھر بچوں کو کبھی بھی یہ سارے کام نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کی خیر خواہی اور بچوں کے ساتھ محبت میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو اپنے ہاتھ سے خود سے کام کرنے کے قابل بنا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا ٹاپک ہے، سونے سے پہلے 2 اہم کام. تو اس میں فرماتے ہیں کہ چند کام ایسے ہیں جو عورت کو سونے سے پہلے کرنے چاہیے. ایک کام تو آپ سب آلریڈی کرتے ہی ہوں گی کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ کچن وغیرہ سمیٹنا، رات کے کھانے کے برتنوں کو جو ہے وہ سنک میں ڈالنا، اگر اگلے دن دھلیں گے تو رات کو سنک میں ڈال دینا ہے، یا کچھ کو جو ہے وہ دھو کر کے ان کی جگہ پہ رکھ دینا ہے. جو کچن کے برتن وغیرہ ہیں کھانے کے، تو ان کو جو بھی کرنا ہے دوسرے برتنوں میں، چھوٹے برتنوں میں شفٹ کر کے پھر ان کو فریج میں رکھنا وغیرہ. تو یہ اس طرح کے کام تو آپ امید ہے کہ سب کرتے ہی ہوں گے، کھانے کو سڑنے کے لیے، گلنے کے لیے باہر نہیں چھوڑ دیتی ہوں گی. لیکن یہاں پر دوسرے 2 کام بتائے جا رہے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اگلے دن کا شیڈیول بنائیں، اسکیڈول جو ہے وہ اگلے دن کا بنائیں کہ کل کو میں نے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کیا کرنا ہے اس کو انگریزی زبان کے اندر تھنگس ٹو ڈو لسٹ بھی کہا جاتا ہے. تو تھنگس ٹو ڈو لسٹ جو ہے یہ بنانا جو ہے وہ ایک اچھی عادت ہے، اور شاید آپ ہم سے بھی پہلے سن چکی ہوں گی کہ ہماری بھی بہت ساری تھنگس ٹو ڈو لسٹیں ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ان میں سے بھی پرائیورٹائز کی بھی لسٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے. تو تھنگس ٹو ڈو لسٹ جو ہے وہ خواتین کو بھی بنانی چاہیے، اس سے جو ہے وہ کام کرنے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں، اہم کام کو بھولنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے نا کہ اہم کام کو بھولنا مشکل ہو جائے. اس کے لیے جو ہے وہ خواتین گھر کے فریج کو بھی استعمال کر سکتی ہیں، کہ آج کل جو ہے وہ فریج ڈور میگنیٹس ملتے ہیں، تو ان یعنی ایک لسٹ بنا لیں کاغذ کے اوپر اور اس کو جو ہے وہ فریج کے اوپر میگنیٹ سے چپکا دیں، تو کل صبح پھر جب آپ اپنے دفتر میں آئیں گی یعنی جس کو کچن کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو آسانی کے ساتھ وہ لسٹ جو ہے وہ نظر آ جائے گی. कल का स्केड्यूल बनाना। अब उसमें पीछे भी हम पढ़ चुके थे कि बहुत ज्यादा काम जो है वो एक दिन के लिए नहीं रखें, बल्कि तीन काम, कि आज के दिन मुझे तीन काम क्या करते हैं। बाकी डेली रूटीन के जो काम होते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, वो वक्त का तकाजा खुद याद दिला देता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, जो कि रोजाना की स्केड्यूल में नहीं आते हैं, तो उनको लिख लेना बेहतर होता है। अच्छा, दूसरा क्या काम करना है कि कल के दिन बच्चों ने जो कपड़े पहनने हैं स्कूल जाने से पहले, उनको निकाल कर इस्त्री करवा कर या इस्त्री करके, अगर खुद करने हैं, बच्चों ने नहीं करने हैं, बच्चे इतने बड़े नहीं हुए कि वो अपने कपड़े खुद से इस्त्री कर सकें, तो माँ को जो है वो उनके कपड़े इस्त्री करने होते हैं। पहले तो होम स्कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन अब तो माशाल्लाह काफी सारे लोग जो है वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, बल्कि यानी बहुत ज्यादा ही जो है वो इस वक्त उसका ट्रेंड आया हुआ है। उसके मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। कुछ लोग जो है वो होम स्कूलिंग खाली इस वजह से करते हैं कि स्कूल की फीसें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा लेते हैं। कुछ लोगों के रीजन जो होती हैं वो स्कूल का सोशली कल्चरली बुरा माहौल, जैसे बुलियंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो होम स्कूलिंग कर लेते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए होम स्कूलिंग कर रहे होते हैं। बहरहाल जो भी वजह है, अगर आपके बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो फिर भी बच्चों के कपड़े जो है वो इस्त्री करने का एक फिर भी जरूरत पड़ती है। घर के अंदर भी पहनने के होते हैं या मदरसे जा रहे हैं या जो है वो मेहमान के सामने जाना है, तो इस्त्री करवाने की जरूरत जो है या करने की जरूरत जो है वो बहरहाल अपनी जगह पर कायम रहती है। तो बाकी रहती है, तो जो कपड़े पहनने हैं उनको निकाल कर इस्त्री करवा कर अपनी जगह पर लटका दे, ताकि बच्चे उठें और उस वक्त उनको कपड़े ढूंढने ना पड़े। ठीक है, स्पेशली कहीं जाना है सुबह को, स्कूल हो या मदरसा हो या कोई और जगह हो, तो उस वक्त जो एक टेंशन बची होती है ना कि भाई कपड़े कहाँ हैं वगैरह, तो वो अगर स्त्री कोई लटके में हो तो वो टेंशन जो होती है वो क्रिएट ही नहीं होती है। फिर बच्चों के लंच में रात को ही जो चीजें पैक की जा सकती हैं आप पैक कर दें। जरूरी नहीं है हर चीज जो है वो रात को पैक की जा सकती हो, लेकिन अगर की जा सकती है तो उसको रात ही को पैक कर दें। जो चीजें डिफ्रॉस्ट यानी गैर मुंजमद करने वाली हैं, तो जहन में रख लें कि मुझे क्या क्या चीज डिफ्रॉस्ट करनी पड़ेगी। सोने से पहले अगर ये काम कर लिए जाए तो उसका भी फायदा होता है। खास तौर पर खाविन साहब ने बिजनेस पे जाते हुए या दफ्तर जाते हुए जो कपड़े पहनने हैं वो औरत को रात को तैयार करके सोना चाहिए। बहुत सारे घरों में इसी बात पे झगड़ा होता है कि खाविन दफ्तर जाना चाहता है तो उसके कपड़े तैयार नहीं होते, इसलिए औरत उनको पहले ही तैयार करे। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे अच्छी सिचुएशन तो ये है कि भाई माशाल्लाह खातून जो है वो खावन के कपड़े तैयार कर रही हैं और स्त्री भी कर रही हैं या करवा रही हैं और उनको जो है वो जगह के ऊपर टांग रही हैं, ताकि सुबह को जब उनको जाना हो तो फिर वो उनके लिए परेशानी का सबब ना बने। दूसरी इसके अंदर सिचुएशन ये हो सकती है कि जो खातून हैं वो करती तो हैं लेकिन इसमें सुस्ती कर जाती हैं और कभी भूल जाती हैं, कभी कर लेती हैं, कभी नहीं करती हैं। ठीक है, तो उसमें फिर अगर जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये इस वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि भाई सुस्ती का काहली या बेध्यानी बेतवज्जुही की वजह से जो परेशानी होगी या जिसकी वजह से झगड़ा वगैरह होगा तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या थी कि बाकायदगी के साथ करती हैं, एक आध दफा तो किसी से भी भूल हो सकती है, कोई भी गलती हो सकती है, वो तो हर इंसान से गलती हो सकती है, तो उसका तो जिक्र ही नहीं होता ना, जो बहुत ही कम चीज होती है उसका तो जिक्र ही नहीं होता ना, वो तो बादून की तरह होती है। तो पहली सिचुएशन ये है कि करती हैं, दूसरी सिचुएशन ये है कि सुस्ती कायरी कर लेती हैं, अक्सर जो है वो काम ठीक नहीं होता है वगैरह।
अब तीसरी सिचुएशन जो है वो जमाने के अंदर बहुत ज्यादा यानी मुआशरे के अंदर बहुत तेजी के साथ ये फैल रही है। वो तीसरी सिचुएशन क्या है कि मैं क्यों करूं, ठीक है। तीसरी सिचुएशन जो इस वक्त बिल्ड हो रही है या बहुत जगहों पे बिल्ड हो चुकी है वो क्या है कि मैं क्यों करूं, ठीक है ना। आप खुद करें, तुम खुद करो, जो बल्कि नारे भी लगाए गए थे सड़कों के ऊपर कि अपने मोजे खुद उठाओ, अपनी जो है वो यानी इस्त्री खुद करो और अपना ये खुद करो, ठीक है। तो वो सिचुएशन जो है वो जाहिर है इसको एक नाम भी दिया गया है जिसको फेमिनिज्म कहते हैं, या इसको औरत की आजादी कहा जाता है, या इसको जो है वो औरत की ताकत कहा जाता है, एम्पावरिंग वुमेन वगैरह कहा जाता है। तो ये जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है ये बहुत ही ज्यादा एक बुरी सिचुएशन है, क्योंकि इस सिचुएशन का जो मतलब है ना, वो सिर्फ मर्द के लिए बुरा नहीं है कि मर्द के कपड़े इस्त्री नहीं होंगे, मर्द के जो है वो घर के काम नहीं हो रहे होंगे, बल्कि ये जो तीसरी सिचुएशन है ये औरत के लिए उससे भी ज्यादा बुरी है, ठीक है। क्योंकि औरत को जो है ना ये जो बातें कही जा रही हैं कि तुम्हारी आजादी और तुम अपना काम जो है वो बस अपने काम से काम रखो और दूसरे का काम शौहर का काम करना कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये चीज जो है वो औरत के अपने लिए जो है वो इंतहाई 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 जो है वो भयानक है। सिर्फ नुकसानदेह नहीं कहना काफी होगा बल्कि इंतहाई भयानक है, ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी जो क्रिएट की जा रही है सिचुएशन ये की जा रही है बाकायदा जो वेस्टर्न मॉडल है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो मॉडल है ना, वहां पर हमारे मुआशरे को पहुंचाने के लिए ये वाली काम की ये वाली यानी मेहनत की जा रही है, ठीक है। तो औरत के लिए ये बहुत ज्यादा एक भयानक सिचुएशन है जिसका कि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा है, इल्ला माशाल्लाह किसी को हो रहा है तो हो रहा है, वरना किसी को भी अंदाजा नहीं हो रहा है इसका। और ये औरत से भी ज्यादा बढ़कर, ये औरत से भी ज्यादा बढ़कर के ये किसके लिए भयानक है, ये है अगली नस्ल के लिए भयानक, अगली नस्ल के लिए, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है ये इंतहाई खौफनाक तरीन जो है वो सिचुएशन है कि जिसका कि हम इदराक ही नहीं कर सकते कि क्या क्या होता है अगली जनरेशन के साथ। तो इस मौजू को जो है ना वो अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल अंधाधुंध जो है ना वो बस इस रास्ते के ऊपर चल चल पड़े हैं और अपनी बेटियों को जो है वो इसी रास्ते के ऊपर चला रहे हैं और उनको नहीं पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है जो कि दूसरे लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर आजकल लोग बात बात भी काफी ज्यादा कर रहे हैं, हमें चाहिए कि इन चीजों से अपने आप को आगाह करें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने एक और भी चीज लिखी है डायरेक्ट मैसेज में है तो बाकी लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि ये जो घर में ये जो बात होती है कि अपना काम खुद करो, तो उसके अंदर फिर ना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने काम जो है वो खुद किया करते थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने काम खुद किया करते थे, पहली बात तो ये कि उस घर के अंदर इतने सारे काम ही नहीं होते थे, ठीक है। वो घर ही इतना सादा होता था कि एक कमरे का गुरफा होता था, बाहर जो है वो छोटा सा सहन होता था, घर के ऊपर क्या कहते हैं घर का दरवाजा भी नहीं होता था, ठीक है, बल्कि खजूर के पत्ते जो है ना वो लटक रहे होते थे उस घर के ऊपर, उस घर के दरवाजे के ऊपर, और उस घर के अंदर पानी पीने के लिए एक घड़ा होता था और जो है वो बिस्तर के लिए जो है वो एक बिछौना होता था, और कच्ची जो है वो दीवारें होती थी और कच्ची जो है वो यानी छत होती थी। तो उस घर के अंदर कोई इतने ज्यादा काम नहीं होते थे, लेकिन जो खाने पकाने वाला काम होता था वो अजवाज मुताहरात खुद ही करती थी, और सफाई सुथराई वाले काम जो है अजवाज मुताहरात खुद ही करती थी। नबी अलैहिस्सलाम जब घर तशरीफ लाते थे तो वो चंद एक काम जो है वो कर लिया करते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जो है वो पूरी दुनिया का इंतजाम करते थे, उसके लिए जो है वो बाहर वक्त लगता था, ठीक है, और मस्जिद के अंदर फजर के वक्त चले गए, अब फजर के बाद देर तक जो है मस्जिद में बैठे होते थे, इशराक के बाद लोगों के साथ मजलिस करके, लोगों के ख्वाब सुन करके, सब कुछ कर कर आकर के फिर वापस आते थे। ठीक है, फिर जो है वो दावत व तबलीग का काम करते थे, वफूद से मुलाकातें करते थे, फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ सफर होते थे जिनमें जिहाद के सफर जो है वो भी शामिल होते थे, और इसके अलावा भी कोई सफर वगैरह हो तो वो सब शामिल होता था। तो घर का इंतजाम जो है वो बहरान अजवाज मुताहरात या जो बनात सालेहात होती थी वही कर रही होती थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अगर घर के अंदर दो चार जो काम किए हैं ना, तो उसको बहाना बना करके ये कहना कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम अपना काम खुद करते थे, तो ये चीज यानी डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट होल्ड एनी वेयर। इस वाली जो सोच है ना कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है, इस सोच को आजकल कहा जाता है इस्लामी फेमिनिज्म, इस्लामिक फेमिनिज्म या इस्लामी फेमिनिज्म। ठीक है, एक तो होता है ना फेमिनिज्म जिसमें कि वो दीन का इनकार कर देते हैं, बिल्कुल ही दहरी कस्म के वो लोग होते हैं, और एक होता है कि बहुत दीनदार लोग होते हैं लेकिन वो दीन के साथ साथ जो है ना वो ये वाली काम यानी जो दीन के चंद बातों का एहतमाम करते हैं लेकिन उनके साथ साथ जो है वो ये चीजें भी यानी जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो भी इसके अंदर इंकल्केट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। कल सुबह जो है या आजिज अपने बच्चों को पार्क लेके जाता है और वहां पे फिर वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, मैं थोड़ी वॉकिंग कर लेता हूँ, तो वहां से जो है वो हम जब गाड़ी से चला के वापस आ रहे थे अपने घर बच्चों को लेकर के, तो रास्ते में देखा कि एक जगह है जो कि बेसिकली रोड ही है, रोड यानी सर्विस रोड जो होती है, बहुत ही डेंस हाईवे है, उस हाईवे की सर्विस रोड है, और सर्विस रोड के बराबर में एक लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी के साथ जो है ना वो लोग वॉकिंग कर रहे होते हैं सुबह के वक्त। ठीक है ना, वो ऐसा एक वॉकिंग ट्रैक बन गया है, बस लोग वहां पर वॉकिंग कर रहे होते हैं। तो कल हमने देखा कि माशाल्लाह अल्लाह रहम करे, एक पाकिस्तानी, बिल्कुल पाकिस्तानी ही लग रहे थे, दाढ़ी वाड़ी भी थी उनकी, वो साहब और साथ उनकी बेगम साहिबा। ठीक है, यानी वो बंदा जो होगा वो कोई 30s में होगा या अर्ली 40s में होगा, लेट 30s या अर्ली 40s के अंदर वो बंदा होगा, वो भी जॉगिंग कर रहे हैं और साथ उनकी बेगम साहिबा भी जॉगिंग कर रही है। ठीक है, अच्छा जॉगिंग तो भाई अमेरिका के अंदर हर बंदा करता है, यूरोप के अंदर जो है वो औरतें जॉगिंग कर रही होती हैं, मर्द जॉगिंग कर रहे होते हैं, या ये कि इवन हमारे मुल्कों के अंदर भी जो है जो बिल्कुल इस तरह के रोड साइड के ऊपर जॉगिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो दीनदार वजाकत वाले लोग नहीं होते हैं, वो दीनदार वजाकत वाले लोग नहीं होते हैं ना, यानी साहब की जो है वो साहब की तो खैर जो भी है, लेकिन औरत दीनदार वजाकत वाली नहीं होती है ना जो कि इस तरह से पब्लिक प्लेस के ऊपर जॉगिंग कर रही होती है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो दुनिया के अंदर मामला चल रहा है वो ये है कि दीनदार वजाकता के लोग जो हैं वो ऐसे काम कर रहे होते हैं। अब वो जो खातून अपने शोहर साहब के साथ जॉगिंग कर रही थी, तो उन्होंने अच्छे तरीके से ना अपने आप को लपेटा हुआ भी था, दुपट्टा भी लपेटा हुआ है, चेहरे को भी छुपाया हुआ है, और जो है वो ऊपर भी लपेटा हुआ है, और साथ जो है वो जॉगिंग कर रही। ठीक है, तो यानी ये एक नया फिनोमिना है हमारे जो 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 दीन का असल मिजाज है वो तो औरत को अल्लाह ताला ने छुपने वाली चीज बनाया है ना। ठीक है, पर्दा, हिजाब। ठीक है, अब ये कोई थोड़ी है कि अपने ऊपर आप जो भी कपड़ा लपेट लें और फिर उसके बाद जो है वो आप पब्लिक प्लेस के ऊपर आकर के जॉगिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, हत्ता के इवन सफा मरवा के ऊपर जो सही होती है वो भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि सफा मरवा के ऊपर जो सही होती है वो किसकी सुन्नत है, वो बीबी हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत है। ठीक है, और बीबी हाजरा जो थी वो सफा से लेके मरवा तक चली थी, लेकिन एक मुकाम पर जिसको के मीलैन अखबरैन कहते हैं वहां पर वो दौड़ी थी। ठीक है ना, वहां पर वो दौड़ी थी, सही है, लेकिन सुन्नत क्या है सफा मरवा की सही की, कि इस मीलैन अखबरैन के मुकाम के ऊपर मर्द दौड़ते हैं, औरतें नहीं दौड़ती, मर्द दौड़ते हैं औरत नहीं दौड़ेगी, लेकिन आजकल तो औरतें भी वहां पे दौड़ती हुई नजर आ जाती हैं। ठीक है, आजकल ये हाल हुआ है कि औरतें भी सफा मरवा के मीनाइन अफगरैन के अंदर दौड़ती हुई दो चार नजर आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे मशायख उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो बीबी हाजरा दौड़ी थी ना मीनैन अखबरैन के ऊपर, जो बीबी हाजरा दौड़ी थी वो किस वक्त दौड़ी थी, जब उनको देखने वाला कोई भी नहीं था, राइट, उनको देखने वाला कोई भी नहीं था, हत्ता कि उनका महरम भी कोई नहीं था उनको देखने वाला, राइट। महरम तो महरम, जो महरम उस वक्त दूध पीते हुए बच्चे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी उस वक्त उनको नहीं देख सकते थे जिस वक्त वो दौड़ी थी, राइट। क्यों दौड़ी थी? इस वजह से नहीं दौड़ी, इस वजह से वो दौड़ी थी ना कि उनको अपना बेबी नजर नहीं आ रहा था, इस वजह से वो दौड़ी थी ना, ठीक है ना, ताकि जल्दी से जो है वो दूसरी तरफ पहुंच जाए, ताकि अपने बच्चे को जो है वो फिर से देखना देखना शुरू हो जाए। कितना उनको फिक्र पड़ी हुई थी कि कहीं कोई दरिंदा आकर खा ना जाए, इस वजह से वो दौड़ी थी। लेकिन क्योंकि दीन का मिजाज ये है कि औरत जो है वो मर्द की निगाहों से ओझल, तो इसको एक बहुत ही लतीफ अंदाज में हमारे मशायख ने बयान किया, जो कि ऑफ कोर्स पर्दा जो है वो महरम से होता है, गैर महरम से होता है, महरम से नहीं होता पर्दा जो है वो दूध पीते वो बच्चे से नहीं होता, लेकिन एक लताफत होती है ना बात को बयान करने की, तो उस लताफत के अंदाज में बयान किया कि बीबी हाजरा भी जो दौड़ी थी तो वो ऐसे दौड़ी थी कि उनका छोटा बच्चा भी उस वक्त उनको नहीं देख सकता था। लेकिन आज के दौर के अंदर क्या क्या नया दीन बनाया गया है और बनाया जा रहा है, और उसी के ऊपर सारी की सारी मेहनत हो रही है, जिसको कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखा दीन का नया एडिशन, दीन का लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। वो ये है कि आप जबरदस्त तरीके से दीनदार वज़ाकता रखी हुई होंगी और दीनदारी के बहुत सारे काम कर रही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है बेपर्दगी भी हो रही होगी, बेहयाई भी हो रही होगी, ठीक है ना। अब ये खातून जो है वो हम जहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए लेके जाते हैं, खातून साहब आ जाती हैं हॉकी खेलने के लिए, वहां पे हॉकी खेल रही हैं, ठीक है, और पता नहीं किस तरीके से जो है ना वो अपने आप को उन्होंने कवर जबरदस्त तरीके से, जैसे कोई बुरके वाली नकाबी जो है वो वहां पे आकर के हॉकी खेल रही। भाई पूरी दुनिया आपको वहां पे देख सकती है, ठीक है ना, चारों तरफ जो है वो बिल्डिंग्स हैं वहां पे, और हजारों लोग जो है वो उन बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, आप इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में आकर के जो है वो हॉकी खेल रही, कोई तमीज है, ठीक है ना। अच्छा कोई बिल्कुल ही वो नहीं, कोई जिस तरह से गैर मुस्लिम जो है वो वज़ा खता में होते हैं, जैसे उन्होंने लिबास पहन, नहीं वैसे नहीं, बिल्कुल अपने आप को कवर किया हुआ है, बिल्कुल अपने आप को कवर किया हुआ है, लेकिन ये भी करना है, ठीक है। तो ये जो है ना ये नहीं समझ में आ रही हमारी ये बातें, हम कहेंगे नहीं इसमें हर्जी क्या है, अपने आप को कवर करके हॉकी खेलें या क्रिकेट खेलें या कुछ भी खेलें, हर्जी क्या है। तो हमारी तो जहालत इस दर्जे की पहुंची हुई है ना कि अभी तो हमें दीन की समझ हासिल करने में अभी तो अभी बहुत ज्यादा हमें आगे मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा दीन को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम बिल्कुल जहालत के अताह दर्जे के को गिर चुके थे, जहालत के अताह दर्जे को गिर चुके थे। अब आहिस्ता आहिस्ता दीनदार हो रहे हैं, तो कोई कुछ किसी तरीके से दीनदार हो रहा है, तो किसी तरीके से दीनदार हो रहा है, ठीक है। लेकिन भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है वो दीन के मिजाज को बिल्कुल ही पलट करके कोई नया किस्म का दीन बनाना शुरू कर देंगे, नहीं, हर्जी क्या है, हर्जी क्या है इसके अंदर, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हर्ज क्या है, आपने जो है वो दीन का भी बहुत ज्यादा मजीद हासिल करने की जरूरत है, भी आपने बात को समझा नहीं। तो ये जो तीसरी सिचुएशन आपको बताई है, पहली सिचुएशन क्या थी कि जिसके अंदर औरत घर के अंदर मर्द की खिदमत करती है, उसके कामों को समेटती है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि जिसके अंदर कमी कोताही हो जाती है, सुस्ती काहली हो जाती है, कभी होता है काम कभी नहीं होता, उसको हजरत ने यहाँ पे एड्रेस किया है, और तीसरी सिचुएशन ये है कि नहीं करना ही नहीं है, अपना काम खुद करो। तो अब इसका नतीजा क्या होता है कि मर्द भी यही कहता है तुम भी अपना काम सारा खुद करो, कमाओ और खुद खाओ, खुद कमाओ खुद खाओ। तो इस वजह से ऐसी मिसालें आज अनगिनत मौजूद हैं, और कभी कभी जो है वो हमारे सामने किसी की खास मिसाल भी आ जाती है, वरना तो अमूमी तौर पर हजारों मिसालें नहीं लाखों मिसालें मौजूद हैं कि जिसके अंदर 50-50 चलता है, मियां बीवी भी हैं, शादी के बंधन में बंधे हुए भी हैं, लेकिन शौहर जो है वो अपना खर्चा खुद उठाएगा, हत्ता कि अपने खानदान वालों का खर्चा खुद उठाएगा, और बीवी जो है वो अपना भी खर्चा खुद उठाएगी, अपने खानदान वालों का खर्चा खुद उठाएगी। हत्ता कि अगर कहीं बाहर भी जा रहे होंगे ना कोई फैमिली गैदरिंग में, तो वहां पर भी अलग अलग, बीवी अपना खर्चा उठा रही है, शौहर अपना खर्चा उठा रहा है, ठीक है। और फिर खाली 50-50, तो ये 50-50 भी हकीकत में नहीं हो रहा होता है, बल्कि हकीकत तो इससे ज्यादा होती है कि औरत जो होती है वो 50 से कई गुना ज्यादा कर रही होती है। जब ये वाली सिचुएशन बनती है ना 50-50 वाली, तुम अपना काम खुद करो मैं अपना काम खुद करूंगी, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं, तो ये चीज जो है वो फिर बढ़ती है, और औरत जो होती है वो 50 नहीं कर रही होती, फिर औरत जो है वो 70-80% कर रही होती है। क्यों? इसलिए कि औरत के अंदर फिर भी कुछ घर का ख्याल बाकी रहता है, फिर भी कुछ बाकी रहता है, कुछ अरसे तक बाकी रहता है, बच्चों का ख्याल बाकी रहता है, तो वो जो बाहर के काम कर रही होती है वो साथ साथ बच्चों का भी ख्याल कर रही होती है, क्योंकि रहम जो है ना वो बहरहाल अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ही डाला है, ठीक है। रहम का मादा औरत के अंदर ही अल्लाह ताला ने डाला है, तो अब बच्चों की जो जरूरियात होती है ना वो भी औरत ने ही पूरी करनी होती, और घर के साथ जो एक लगन है ना वो भी अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ही डाली। ये फितरत वाली चीजें होती हैं, इनको मस्त होने में वक्त लगता है, ये फौरन से मस्त नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता करके मस्त होती है। तो शुरू में तो घर से बाहर निकालने के ऊपर मेहनत होती है, तो थोड़ी मस्त होती है औरत की फितरत कि वो घर से बाहर जाती है, लोगों की निगाहों में जा करके जो है वो काम कर रही होती है, लेकिन बच्चों की ख्याल करने वाली फितरत फौरन से मस्त नहीं होती, वो अभी भी उसके अंदर बाकी रहती है। घर का ख्याल करने की फितरत फौरन से मस्त नहीं होती, अभी भी बाकी रहती है। तो अब वो औरत क्या जिंदगी गुजार रही होती है, वो बाहर का भी काम करती है, ठीक है, वो कमा करके भी लेकर के आती है, और फिर घर में आकर के वो बच्चों का भी ख्याल कर रही होती है। जब बच्चे होते हैं तो उनका ख्याल, यानी जब वो घर में होती है तो बच्चों का ख्याल कर रही होती है, ठीक है ना। जब घर में नहीं है तब तो मेड के हवाले करके जाती है, लेकिन जब घर में वापस आती है तो फिर तो बच्चों का ख्याल उसी को वही करती है ना, क्योंकि माँ मामता तो है ना वो, राइट। उसी तरह घर के अंदर खाना पकाने का काम भी वही करती है, ठीक है। तो अब तो ये 50% तो नहीं हुआ ना, ये तो 70-80% हो गया ना उसका हिस्सा, और मर्द साहब जो है वो तो 30% के ऊपर बड़े मजे से खुश हो रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर ताने भी दे रहे होते हैं कि ये तो सभी करते हैं, ये तो सब औरतें करती हैं, तो तुम कौन सा एक्स्ट्रा काम, तुम कौन सा जो है वो एहसान कर रही हो कि अगर बच्चों का ख्याल कर रही हो और जो है वो घर का ख्याल कर रही हो या खाने पकाने का काम कर रही हो, तुम कौन सा एहसान कर रही हो, ये ताने भी देता है मर्द, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, जो भयानक किस्म की सूरत हाल है उसके ऊपर तो वी रियली नीड टू रीड अबाउट देम, लर्न अबाउट देम, आंखें खोल करके, खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फिजा देख, ठीक है ना। बाकी दूसरे मिसरे की यहाँ पे जरूरत नहीं है, पहले ही मिसरा काफी है। खोल आंख, आंखें खोल करके देखो तो दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, किस तरीके से औरत को, बल्कि बसीरत वालों ने तो लिखा कि जो जुल्म आज ये मगरबी तहजीब औरत पे कर रही है ना, इतना जुल्म तो हिंदू तहजीब ने औरत पे नहीं किया था। हिंदू तहजीब जो कि औरत को जो है वो मर्द की चिता में साथ जलाने के ऊपर, जलने के ऊपर मजबूर करती थी ना, उसने इतना जुल्म नहीं किया था औरत के ऊपर जितना का जुल्म ये कर रही है, और उसकी वजह जाहिर है समझ में कैसे आएगा, वो तो आग में जल जाती थी, वो उससे बड़ा जुल्म और कौन सा हो सकता है। मगरबी तहजीब जो है वो शौहर की चिता के साथ जलने को तो मजबूर नहीं करती औरत को, नहीं, इस अंदाज से देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, बल्कि इस अंदाज से इसको देखेंगे तब बात समझ में आएगी कि वो जो काम था उसको औरत बुरा समझ के कर रही होती थी कि मुझे जो है वो चिता में जलना पड़ेगा, मुझे जो है वो, और दूसरे कम से कम वो अगर पागल हो जाती थी वो नहीं समझ रही होती थी, लेकिन दूसरी औरतें तो उसको बुरा समझ रही होती थी ना। ये जो मगरबी तहजीब ने जुल्म रचाया हुआ है औरत के ऊपर, वो तो औरत को ऐसा धोखा दिया है कि औरत उसको अपनी आज़ादी समझ रही होती है, अपनी जो है वो ताकत समझ रही होती है, अपनी एम्पावरमेंट समझ रही होती है, और साथ साथ जो है वो इसके अंदर बुरी तरीके से जो है वो अपना और अपने आने वाली नस्लों का बहुत ज्यादा मामला खराब कर रही होती है। बहरहाल ये तो एक साइड में एक डिस्कशन निकल आई थी, एक और चीज़ बल्कि इसमें ध्यान में आ गई कि ऐसे ऐसे जो है ना वो अल्फाज डाल देते हैं जहन के अंदर बच्चियों के, स्कूल स्कूल भेजते हैं ना, बड़े खुश होकर के तालीम का जेवर से आरास्ता करने के लिए स्कूल भेजते हैं बच्चियों को, ठीक है। वो स्कूल वाले जो है वो ऐसी ऐसी जो है वो सोच और ऐसी ऐसी टर्म्स जो है वो जहन में डाल रहे होते हैं कि तुम अगर घर में रहोगी तो तुम्हारी इंडिविजुअलिज्म खत्म हो जाएगी, इंडिविजुअलिज्म, तुम्हारी इंफिरादियत खत्म हो जाएगी अगर तुम घर में रहोगी, अगर तुम बाहर जाकर जॉब नहीं करोगी तो तुम्हारी इंफिरादियत खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर उनके तो जहन में क्या आएगा, वो तो छोटी बच्चियां होती हैं, उनके क्या जहन में बात आएगी, लेकिन बड़ों को क्या ये बात समझ में नहीं आती जो इस तरह की बातें उनको समझाते हैं या जिन इस तरह की बातों को जो है वो अपने बच्चों में क्लियर नहीं करते कि भाई इनफिरादियत, या इस सूरत को कहेंगे कि जब आपका आपका एक घर है, ठीक है, आपका घर है, आप उसके अंदर जो है वो अपनी इज्जत के साथ रहती हैं, अपने जो है मकाम के साथ रहती हैं, आपकी औलाद होती है, आपका शौहर होता है, आपकी जो है वो चीजें होती हैं, क्या इसको इनफरादियत नहीं कहते, या उसको इनफरादियत कहेंगे कि जब आप जो है वो ट्रेन में सफर करके या बस में सफर करके या सड़क के ऊपर गाड़ी में सफर करके आप जो है वो हजारों लाखों इंसानों के साथ जो है वो सफर करके आप दफ्तर में पहुंच रही हैं, और वो दफ्तर जो है वो आपका दफ्तर नहीं है, वो दफ्तर आपका दफ्तर नहीं है, उस दफ्तर के अंदर आप जिस तरह से मुलाजमत कर रही हैं उसी तरीके से उस कंपनी के अंदर हजारों लोग और मुलाजमत कर रहे हैं, राइट। और उसके अंदर जो है वो समझ नहीं है कि ये मेरी इनफरादियत है, ये मेरी इंडिविजुअलिज्म है, राइट। वहां पे तो आप रेले का हिस्सा हैं। अभी कल जो है वो हमारे दोस्त बता रहे थे कि रियाज शहर के अंदर जो है ना वो ट्रेन का निजाम चला है, तो अब लोग जो है वो ट्रेन के ऊपर बैठ करके या खड़े होकर के ट्रेन के ऊपर सफर करके अपने दफ्तर जाते हैं। पहले ट्रेन का सिस्टम नहीं होता था यहाँ पे, अभी जनवरी से शुरू हुआ है। तो उस ट्रेन के अंदर एक तो रश लगा होता है ना, और उस रश में ज्यादातर औरतें होती हैं, जो सुबह को दफ्तर जाने वाली ट्रेन होती है और शाम को दफ्तर से वापस लाने वाली ट्रेन होती हैं, उनमें ज्यादातर जो रश होता है वो औरतों का होता है, ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि जी जाहिर है वो हजारों औरतें और मर्द होते हैं उसके अंदर, तो चंद दिन पहले जो है ना वो एक ट्रेन जो थी वो खराब हो गई, ठीक है। अब वो खराब हो गई, अब वो ट्रेन जो है वो उसके अंदर से जितने दर्जनों लोग थे उस पूरी ट्रेन के अंदर, दर्जनों तो क्या होंगे, 100 से ज्यादा लोग तो होंगे, वो निकले बाहर। फिर पीछे से जो ट्रेनें आ रही थी, क्योंकि 10-10 मिनट के ऊपर तकरीबन ट्रेन चलती हैं, तो अब ये ट्रेन रुकी हुई है तो पीछे से जितनी ट्रेन आ रही हैं वो सारी भी ट्रैक के ऊपर रुक रही हैं, और आगे रास्ता बंद है, आगे नहीं चल सकती हैं। अब दफ्तर तो पहुंचना है ना, दफ्तर पे तो ना सिर्फ ये कि चलो एक तो खाली टाइम टाइम के थोड़ी लगाना होता है कि हम टाइम पे पहुंचेंगे, आप एक्सक्यूज कर देंगे हमें ट्रेन खराब हो गई थी इस वजह से मैं देर हो गया, देर हो गई मुझे, नहीं, दफ्तर में तो काम पड़े हुए होते हैं ना, दफ्तर में तो टेंशन सर पे सवार हुई होती है कि भाई मुझे काम निपटाना है, तो ट्रेन खराब हो या ट्रेन चल रही हो उससे काम का तो फर्क नहीं पड़ता ना, काम तो चल रहे हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो और काम पाइल अप हो जाएगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आपके लिए जो है वो तकलीफदेह सिचुएशन हो जाएगी। तो अब जो लोग ट्रेन से निकल निकल करके बाहर आ रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग जो है वो सड़क पे आ गए एकदम से, और अब सबको जो है ना वो दफ्तर पहुंचने की जल्दी है। अब जो है वो एक एक टैक्सी के अंदर पांच पांच छह छह लोग जो है वो सवार होकर के अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, क्योंकि अब जब ट्रेन नहीं चल रही तो अब अपनी गाड़ी तो है नहीं, जाहिर है टैक्सी के अंदर आपको जाना है, तो अब उस टैक्सी के अंदर इस तरीके से बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो, अब जो टैक्सी यात्री नहीं होती तो इतनी, यानी लोग जो है वो किस तरीके से जाकर के अपने घर अपने अपने दफ्तर पहुंचे। अब वो जो बड़ी तादाद में औरतें थी वहां पर वो भी इसी तरीके से पहुंची होंगी, राइट, कि सड़क पे निकली हुई है, इधर से किसी टैक्सी को हाथ दे रही है, उधर से किसी टैक्सी को हाथ दे रही है। अब टैक्सी के अंदर जो है वो, अब क्या फीमेल ओनली टैक्सीज तो नहीं होती है ना, राइट, फीमेल ओनली टैक्सी, अब तो मजबूरन पहुंचना है भाई, अब तो किसी तरीके से भी पहुंचना है, अब जैसे तैसे ठुस ठसा करके जो है वो दफ्तर पहुंचो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, और क्या क्या कुछ और नहीं होता है। तो घर से बाहर निकालना औरत को, घर का काम नहीं करना, बाहर जाकर के जो है वो हजारों बॉसेस का काम करना है, हजारों मर्दों के साथ जो है वो शाना बशाना काम करना है, इसको इंडिविजुअलिज्म का नाम दिया जा रहा है। स्कूलों के अंदर ऐसे जो है वो टर्म्स बच्चियों के दिमागों के अंदर डाली जा रही होती है, राइट? तो ये औरत की जिंदगी है, ये अल्लाह ताला ने तरतीब बनाई थी औरत के लिए, इसमें अल्लाह ताला ने औरत के लिए इज्जत रखी थी, या अल्लाह ताला ने तो घर के अंदर औरत के लिए इज्जत रखी थी। तो घर में रह करके तो फिर उसका काम करना होता है ना, जिसने भी बाहर जाकर के कमा करके दे करके आना है, उसके लिए फिर आप घर में उसको सपोर्ट करें, वो बाहर जाकर के आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तो कहे ना कि मैं जो कमा रहा हूं वो मैं आपको नहीं दूंगा, बस मेरी अपनी कमाई है, तुम अपने बाप के घर से खाओ या तुम अपने भाई के घर से जाकर के अपने लिए दाल रोटी का बंदोबस्त करो, मैं तो जो कमा रहा हूं मैं अपने लिए उसको इस्तेमाल करूंगा। तो फिर क्या करेगी औरत, अपना काम खुद करो, ठीक है? फ्रिज की सफाई, फिर अगली बात है कि अपने फ्रिज को साफ करना। बहुत सारी औरतें इसमें सुस्ती करती हैं, जो चीज आती है फ्रिज में डालती जाती हैं, फिर निकालती भी हैं मगर उसको साफ करने के लिए टाइम नहीं देती। फ्रिज के तमाम ड्रॉर्स को निकालना चाहिए और तमाम शेल्फों को निकाल लेना चाहिए और उनको रगड़ रगड़ के साफ और वॉश करना चाहिए। थोड़ा सा साबुन भले पानी के साथ वॉश करें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो वंस इन अ वाइल जो भी आपने अपनी तरकीब बनाई हुई है कि महीने में एक दफा या महीने में दो दफा या ये के चेक करते रहें, जब जो है वो आपको फ्रिज जो है वो गंदा होता हुआ नजर आए उस वक्त जो है फिर ये डीप क्लीनिंग फ्रिज की भी जो है वो करनी चाहिए। फ्रिज में जिन चीजों को रखना है उनको भी आप ऑर्गेनाइज यानी मुनज्जम करके रखें ताकि चीज का निकालना आसान हो जाए। जिस तरह ड्रॉर्स को सेट करने के लिए या जो है वो टेबल टॉप्स को सेट करने के लिए बात हुई थी कि भाई जो क्विकली एक्सेसिबल चीजें होती हैं तो उनको सामने रखना है और जो बात के कम इस्तेमाल की चीजें वो पीछे रखनी है, स्टोर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये सारी बात हुई थी। उसी तरह से फ्रिज भी एक छोटा सा स्टोर ही होता है, तो इसको उस लिहाज से ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि चीज का निकालना आसान हो जाए। फ्रूट और सब्जियों के लिए आप खुली टोकरियां इस्तेमाल करें। जब आप ग्रोसरी करके आए तो फ्रूट और सब्जियों को आप फौरन धोएं और धो के रखें। अगर आप इसी तरह उसको रख देंगी तो बच्चे किसी भी वक्त फ्रूट खा सकते हैं, तो धोए बगैर फ्रूट को खाने से नुकसान होगा, ठीक है? तो बाहर के मुल्कों में खुसूसन जैसे सऊदी अरब के बड़े शहरों में वगैरह और या और भी जगहों पे यूरोप अमेरिका के अंदर तो यूजुअली जो है ना वो धुले हुए फ्रूट ही मिलते हैं और जो स्टोर्स में लगे हुए होते हैं वो अच्छी खासी साफ सुथरी हालत में लगे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको धो हल्का थोड़ा बहुत उनको फिर भी धो लेना चाहिए, ठीक है? लेकिन हमारे मुल्कों के अंदर आपको पता ही है कि सफाई सुथराई का इंतजाम जो है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो इस वजह से हमें सफाई सुथराई से कोई वास्ता नहीं है, तो इस वजह से जो है वो ऐसी बात ऐसा है नहीं, मैं आपका लीव इस तौर पर बोल रहा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों का मुल्क होता है लेकिन सफाई सुथराई सबसे कम हमारे मुल्क के अंदर ही होती है, जाहिर है दीन को छोड़ेंगे तो फिर नाम के मुसलमान ही रह जाएंगे। तो इस वजह से बहुत ज्यादा गंदगी होती है और लोग अपने गंदे हाथों से जो है फूड वगैरह को हाथ भी लगा रहे होते हैं, तो फिर उसको धोने का इंतजाम कर लेना चाहिए। बाहर के मुल्कों के अंदर जो है वो सफाई सुथराई होती तो है लेकिन वो जाहिरी तौर पर ज्यादा होती है, ठीक है? लेकिन गंदगी वहां भी बहुत ज्यादा होती है और लेकिन वो गंदगी उनकी नजर नहीं आ रही है, ठीक है? तो इस तरह के बाकायदा स्टडीज भी हो चुकी हैं कि जो शॉपिंग कार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो शॉपिंग कार्ट को हर बंदा जो है वो अपने हाथों से पकड़ करके फिर पुश करता है ना, तो अब फारग किस्म के लोग होते हैं वो हर जगह कुछ ना कुछ जो है वो स्टडीज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो उन्होंने रिसर्च करी एक दफा कि जिस कौन सी जगह जो होती है ना वो सबसे ज्यादा गंदी होती है, तो यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जा करके उन्होंने चीजों को जो है ना वो माइक्रोस्कोप से जो है बाकायदा मॉनिटर किया। तो जैसे दरवाजों के हैंडल, ठीक है, या और कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोग जो है वो जरा ज्यादा हाथ लगाते हैं, तो इन सारी चीजों को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके किया ना, ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि जो शॉपिंग कार्ट का जो हैंडल होता है ना, वो सबसे ज्यादा गलाजत उसके ऊपर, सबसे ज्यादा गलाजत उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जो हाथ धोने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो तहारत की फिक्र करने वाले लोग खाली हाथ धोते हैं बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, वरना हाथ धोना जो है ना, ये शाज़ो नादर ही होता है, कोई कोई नहीं हाथ धोता है टॉयलेट से आने के बाद। तो वही जो टॉयलेट वाला जो हाथ होता है, तो उसी हाथ से जो है वो हर चीज को पकड़े होते हैं, और कुदरतन शॉपिंग कार्ट में कोई इतना ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है, क्या होता है कि दरवाजों के हैंडल से ज्यादा जो है वो शॉपिंग कार्ट का जो हैंडल होता है वो गलीज होता है, ठीक है। अब वो जाहिर है गलाजत ऐसी होती है जो कि आपको नजर नहीं आ रही होती है, तो यानी शरी एतबार से जो देखा जाए कि हाँ भाई वो उसको हाथ लगाने से क्या आपका हाथ भी गलीज हो जाएगा, नहीं, शरीयत के एतबार से आपका हाथ नापाक नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि अब आपको वुजू करना पड़ेगा या आपको जो है वो गुसल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन प्योर बायोलॉजिकल एतबार से आपके हाथ में वो गलाजत लगेगी, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो गलाजत है ना वो आपके हाथ के अंदर लगेगी। और जाहिर है उसी हाथ से जब आप अपने खाने की चीज को पकड़ेंगे या अपने जो है वो फ्रूट्स को जो आप उठा उठा करके अपने शॉपिंग बैग के अंदर डाल रहे हैं, उन फ्रूट्स को आप पकड़ेंगे, तो वो जो गलाजत है वो उन चीजों के सर्फेसिस के ऊपर भी लग जाएगी, ठीक है। तो उनके उनको तो फिर खाने का मसला होता है ना, उनसे आपने नमाज नहीं पढ़नी होती, ठीक है, यानी नमाज से इसका ताल्लुक नहीं है कि आप जो है वो फ्रूट से जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से फ्रूट को की जो मॉलिक्यूलर लेवल की जो गंदगी होती है वो नमाज के रास्ते में रुकावट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फ्रूट का ताल्लुक तो खाने से है ना, तो आप खाने के लिए जो ये मॉलिक्यूलर लेवल की गलाजत है, तो वो तो फिर आपके पेट के अंदर जा रही है, आपके मुंह के अंदर जा रही है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो मॉलिक्यूल वो बैक्टीरिया वो जो इस किस्म के अंदर गलाजत जो है वो आपके अंदर पहुंच रही है, ठीक है। कहने का मकसद ये सारी तफसील का ये था कि ये अगर आप माशाल्लाह हाथ धोने वगैरह का अच्छा इंतजाम करती हैं ना, तो ये मत समझें कि बाकी लोग करते हैं, ठीक है, तो बहुत गंद और बहुत गलाजत जो होती है ना वो होती है इसी वजह से, घर आने के बाद जो है वो सबसे अच्छा अमल और सबसे पहला अमल ही होना चाहिए कि साबुन से अपने हाथ को धो, साबुन पानी से हाथ को धो, और बच्चों के भी ऐसी आदत डालें कि बेटा बाहर से आए बेटी बाहर से आई है, पहले जो है ना वो साबुन पानी से अपने हाथ को धो, ठीक है। खाने की टेबल के ऊपर या खाने के दस्तरखान पे बैठने से पहले, ये तो सुन्नत भी है और इसके बड़े फायदे भी बाकायदा किताबों के अंदर लिखे हैं, ठीक है, कि खाने से पहले जो है वो अलग हाथ, इवन घर के अंदर भी, अगर आप घर के अंदर ही थे बाहर से नहीं भी आ रहे हैं तो भी खाने से पहले जो है वो हाथ, और फिर खाने के बाद भी हाथ, ये भी जो है वो सुन्नत, ठीक है। तो फ्रूट और सब्जियों को फिर आप अच्छे आप फौरन धो लें और धो करके रखें, छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे इतना याद उनको चीजें याद नहीं रहती हैं, तो उन्होंने अगर बगैर धोए खा लिए तो फिर उनके सेहत को वो खराब कर सकती है। ये बात भी जहन में रखें कि आजकल के जमाने में ज्यादा पैदावार लेने के लिए सब्जियों और फलों के ऊपर बहुत सारे स्प्रे किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स जिनको कहते हैं, तो वो स्प्रे खुद भी जहरीले होते भाई, पेस्ट को मारने के लिए तो जहरी इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है, तो वो अपने लेबोरेटरीज के अंदर तो कहते हैं कि नहीं जी दिस इज हार्मलेस फॉर ह्यूमंस, लेकिन इनकी लेबोरेटरी जो होती है वो कितनी सच्ची होती है पहली बात, ठीक है, क्योंकि झूठों की बनाई हुई लेबोरेटरी जो होती है वो खुद बहुत तो नहीं सच्ची हो जाती है ना, तो है तो ये सारे के सारे झूठे, तो इनकी सच के ऊपर इतना एतमाद नहीं करना चाहिए, ठीक है, इनकी बात के ऊपर इतना एतमाद नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये होता है कि वो झूठ बोल रही होती है, उनको पता भी होता है कि ये चीज नुकसानदेह है, फिर भी उसको जो है वो रिश्वत रिश्वत दे करके इनकी लेबोरेटरीज होती हैं वो पास कर देती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई इनकी फिलहाल जो रिसर्च है ना उसके मुताबिक इनका ख्याल है कि ये हार्मलेस है, कल को इनको पता चलेगा कि नहीं भाई इससे तो फलानी बीमारियां पैदा हो रही थी, इससे तो फलानी जो है नुकसान हो रहे थे, तब उनको पता चलेगा ओहो जिस चीज को हम पहले हार्मलेस कहते थे ना वो हार्मलेस नहीं निकली। तो साइंस का तो ये मामला है, साइंस तो इंसानी ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, तो आज इसकी कोई फाइंडिंग होती है कल कोई वो फाइंडिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो साइंस के ऊपर तो वैसे भी अगर वो सच्ची भी हो ना साइंस, अगर साइंसदान सच्चे भी हो यानी झूठ ना भी बोल रहे हो ना हमारे साथ, फिर भी हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका कुछ पता नहीं होता। आज कुछ बात करेंगे, कल उनको कोई और बात नजर आ जाएगी तो उसके मुताबिक अपने बात को चेंज कर देंगे, फिर कोई और बात नजर आएगी फिर उसकी बात को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बताई हुई बात है, और अल्लाह ताला जो है वो खालिक है हमारे भी और खालिक है उस बैक्टीरिया के भी जो कि हम फ्रूट्स के ऊपर लगता है, उसके भी खालिक हैं और फ्रूट के भी खालिक हैं। ठीक है, और हमारे इंटेस्टाइंस के भी खालिक हैं। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला तो फिर हर चीज के खालिक है ना, कोई ऐसा कोई थोड़ी है कि इसके खालिक है तो उसके खालिक नहीं है, तो उसके खालिक है तो इसके खालिक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से जो हमें चीजें सिखाई हैं तो वो हमें बहरहाल कर लेना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से ये बात साबित है कि जो खाने की चीज है उसको ढक करके रखना। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक ने नबी अलैहिस्सलाम को दूध पेश किया, तो बकरी के थन से दूध निकालने के बाद जिस बर्तन में उसको भरा था उस बर्तन के ऊपर रूमाल रखकर उसको ढक दिया था, और फिर उसको लेकर के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। ठीक है, तो ये ढकने का क्या वजह होती है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कोई और मक्खी वगैरह होती है या कोई और इस किस्म की चीज होती है वो दूध के अंदर ना पड़ जाए। ठीक है, तो इस तरह की हाइजीनिक जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें सुन्नत से मिलती है, सहाबा कराम की सुन्नत से मिलती है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मिलती है। ठीक है, हमें तो साइंस की जरूरत ऐसे ही है नहीं बस। ठीक है, दुनिया का निजाम चल रहा है, जरूरत के लिए जो है वो साइंस पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है, और कमाने के लिए जो है सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन जो अल्लाह की बनाई हुई दीन के ऊपर चलता है ना वो मोहताज नहीं रहता साइंस का, वो मोहताज नहीं रहता साइंस का, बल्कि वो साइंस को डिफाई कर रहा होता है। ठीक है, उसके ऐसे हालात होते हैं कि साइंस भी उसको समझने से कासिर होती है कि इसके ऐसे हालात कैसे हो सकते। बहरहाल तो बस ये कर लेते हैं। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि आज का, अच्छा तो वो स्प्रे जो होते हैं जहरीले होते हैं, अगर उनको अच्छी तरह से धोया ना जाए तो उनके कंटेंट्स जो होते हैं यानी मादे जो उनके अंदर होते हैं बच्चों के जिस्म में जाकर उनको बीमार कर देते हैं। इसलिए फ्रूट और सब्जियों को घर में लाते ही फौरन धोकर रखना इंतहाई अहम है। अगर आप घर में स्ट्रॉबेरी या रसबेरी लेकर आई हैं, या रस भरी से मुराद यहाँ पे शायद रासबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी या रासबेरी या कोई और बेरी, हमारे यहाँ उसको बेर भी कहते हैं, बेर नाम की बहुत सारी चीजें भी दुनिया के अंदर होती हैं। स्ट्रॉ वाली बेर होती है और रैस वाली बेर होती है और ब्लू वाली बेर होती है। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ बेर कह देते हैं हम सारी की सारी चीजों को। तो अगर इस तरह की कोई चीज लेकर आई है तो उसको सिरके के पानी के साथ धोई धोएं तो उसकी जो फ्रेशनेस की लाइफ है, ताजगी की लाइफ है, वो लंबी हो जाती है। तो विनेगर वाटर से धोना, विनेगर वाटर के बारे में वैसे तो हम लोगों ने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरे इलम में नहीं इस्तेमाल किया, हो सकता है अगर वालों ने किया हो, कि यानी जितना पानी है ना, अगर 4 गुना पानी है तो एक ढक्कन विनेगर, ठीक है, वो उसके अंदर अगर डाल दें तो वो विनेगर वाटर का बन जाता है लिक्विड, और उसके अंदर फिर फलों को डुबो करके आप उसमें निकाल लें, 15 मिनट तक डुबोए रखें तो बहुत हो जाता है। या ये कि इवन विनेगर वाटर का स्प्रे भी बना लेते हैं और स्प्रे से जो है ना वो करके फ्रूट्स वगैरह के ऊपर उसको फिर आप धो लें, नहीं धो नहीं, मतलब विनेगर वाटर से ही बस धो लें, बस इतना उसकी फ्रेशनेस को जो है वो लंबा करने के लिए, जैसा तरीका है। मुख्तलिफ चीजों के रखने के लिए अलग अलग कंटेनर्स होने चाहिए, इससे चीजों का इस्तेमाल आसान हो जाता है। घर की सफाई के बारे में ये कुछ बुनियादी बातें थी। एक टॉपिक और पढ़ लें, वैसे तो टाइम मुकम्मल हो गया लेकिन बस ये पेज मुकम्मल हो जाएगा, और वो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि आज बात इस टॉपिक पे हो ही रही थी, तो चलें इसको भी पढ़ के मुकम्मल कर लेते हैं कि घर की सफाई में मर्द का रोल। तो कहते हैं कि अब घर की सफाई में खाविंद का क्या रोल होता है, तो ये भी बता दिया जाए। ठीक है, तो कहते हैं कि हस्बैंड इज दैट पर्सन हु टेक्स आउट द गार्बेज एंड गिव्स द इम्प्रेशन, ये गिव्स देम, शायद कोई और गलती हो गई है या कुछ और कहना चाह रहे हैं, एंड गिव्स द इम्प्रेशन दैट ही जस्ट क्लीन्ड द होल हाउस। ठीक है, यानी खाविंद वो शख्स होता है जो सिर्फ कूड़ा बाहर निकालता है, यानी बाहर जो है ना वो सड़क पे जो ट्रैश कैन पड़ा हुआ होता है अच्छे मुल्कों के अंदर, हमारे मुल्क में तो ट्रैश व्रैश नहीं होता, ट्रैश कैन बाहर नहीं होता, बस गली होती है। तो बहरहाल जो खाविंद वो शख्स होता है जो सिर्फ कूड़ा बाहर निकालता है और तासुर ये देता है कि वो पूरे घर की सफाई करता है। ठीक है, तो ये गोया के एक तारीफ हो गई, यानी डेफिनेशन हो गई खाविंद की। तो घर का कूड़ा वगैरह जो जमा करके खातून ने दरवाजे के करीब रख दिया। अब यहां से लेकर के बाहर जो ट्रैश कैन है वहां तक पहुंचाना जो है ना, ये काम बंद कर देता है अलहमदुलिल्लाह। ठीक है, एक और बात सुन लीजिए कि द मैनस आइडिया ऑफ हेल्पिंग विद द हाउस वर्क इज लिफ्टिंग हिज लेग्स सो दैट यू कैन वैक्यूम। कि आदमी घर में काम में मदद करने का तस्वुर यह है कि वो अपनी टांगे उठा ले ताकि आप उसकी टांग की जगह पर वैक्यूम क्लीनर लगा सके। मर्द अगर ये दो काम भी कर दे तो बड़ी बात है। ठीक है, अब अदर जी जो है ना, लगता है जिस वक्त ये बात कर रहे थे ना, तो उस वक्त जी जरा मूड में थे, यकीनन अच्छे मूड में भी, मतलब खैर अच्छे मूड में तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन कभी जरा ज्यादा अदर जी जो है ना वो जरा ऐसी बातें करते हैं कि जो कि पॉलिटिकली इतनी करेक्ट नहीं भी होती, कभी ऐसी बातें भी कर देते हैं अदर जी। तो बजाय तो ये बातें पॉलिटिकली सियासी तौर पे बहुत ही ज्यादा करेक्ट नहीं लगती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। असल में मकसद ये बताने का क्या है कि भाई आप जो है ना, ये घर की सफाई वगैरह जो है ना, वो मर्द के ऊपर डालने की नाकाम कोशिश ना करें। ठीक है, वो बाहर का काम कर रहा है, उसको उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने दें, उसी के उस यानी उसको खामखा जो है ना वो टांगे का सीटना, जिसको कहते हैं ना पुलिंग समवंस लेग्स, तो ये वाली हरकत ना करें। अगर वो घर के काम के अंदर हाथ बटा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उनका भी शुक्रिया अदा कर दें अखलाकी तौर पर। ठीक है, लेकिन अपना मूड खराब ना करें, अपनी जो है वो जुबान खराब ना करें कि चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और उसको जो है वो कोस रही हैं, उसको बुरा भला कह रही हैं कि आप कुछ नहीं करते, आप ये नहीं करते, और आपने ये नहीं किया, और तूने ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया, जो भी आपके यहाँ लैंग्वेज चलती है इस किस्म की जो है वो खाम खा के जो है ना घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो खुद कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है अलहमदुलिल्लाह। ऐसे शौहर के ऊपर फिर अल्लाह ताला का एक्स्ट्रा शुक्र अदा करना चाहिए, वरना बहुत बहुत बुरे बुरे हालात होते हैं घरों के अंदर, बहुत ही भयानक किस्म के वाकयात हैं, और हत्ता के खबरें लगी हुई होती हैं अखबारों के अंदर इस किस्म के मामला की जो कि बीवी शौहर के दरमियान हो जाते हैं, और फिर वो इतने उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अखबारात भरे पड़े हुए ऐसे वाकयात से। राइट, इतने संगीन और इतने बुरे वाकयात बीवी शौहर के दरमियान, सिर्फ जो है ना वो ससुराली झगड़े वाले वाकयात नहीं होते, और भी ज्यादा, बहुत बहुत ही ज्यादा। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। तो बस ये है कि अपना काम समझ करके, अपना घर समझ करके, अपनी जिम्मेदारी समझ करके, बल्कि अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी समझ करके इन काम को औरत करे, और बस खाविन से ज्यादा तवक्को ना रखे। ये जो दो बातें आपने यहाँ पे लिखी है ना अंग्रेजी और उर्दू के अंदर, इसका मकसद खाली यही है कि आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। ठीक है, घर के मामले में कम अज कम उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, बस ये मकसद है बात करने का। किसी को कोई सवाल हो या कमेंट हो तो पूछ सकती है। बाकी जो खाविन की दीनी एतबार से बुरी खसलतें हैं और जो बुरे उसके अंदर अखलाक हैं, ठीक है, जो कि वाकई वो कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, जो कि दीनी तौर पे भी पता है कि वो गलत काम है, तो उसके ऊपर जो है ना वो बस अल्लाह ताला से दुआ करें। आप खाविंद की इसलाह नहीं कर सकती, देखिए, लेकिन अल्लाह ताला खाविंद की इसलाह कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला से मांगें। ठीक है, और जायज तरीकों के जरिए से उसकी इसलाह की आप फिक्र कर सकती हैं, लेकिन उसके सर पे सवार होकर के उसकी इसलाह आप नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बात अपनी जगह पर है कि बेशक हम पहले भी कह चुके हैं कि दुनिया के अंदर जो फेमिनिज्म हो या इस्लामी फेमिनिज्म हो या जो भी औरत का बेड़ा गर्क हुआ है या जो भी जो है वो अगली नस्लों का बेड़ा गर्क हुआ है, तो असल में तो इसके पीछे मर्द ही होते हैं, असल में तो इसके पीछे मर्द ही होते हैं, इसमें तो हमें किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है। औरतें उसका हिस्सा बन जाती हैं, उसके ऊपर औरतों को भी सजा मिलती है, औरतें भी बचती नहीं है। ठीक जब वो इस बिगाड़ में मर्दों का हाथ बटाना शुरू हो जाती है ना, तो वो भी फिर उसकी जिम्मेदार हो जाती है और वो भी फिर चला पाती। ठीक है, जो अल्लाह ताला से रुजू करके रखती हैं नबी रसूलुल्लाह के दीन के ऊपर, वो सीखती हैं और फिर सीख करके उसके ऊपर अमल करती हैं, वो फिर इसका हिस्सा नहीं बनती, वो उसकी जिम्मेदार नहीं होती, उनको गुनाह भी नहीं मिलता, सजा भी नहीं मिलती। तो औरत का अब ये काम है कि वो मर्द की इसलाह नहीं कर सकती, अल्लाह से रुजू कर सकती, अल्लाह से दुआएं मांग सकती। और दूसरा जो काम करने का औरत का ये है कि अगर अल्लाह ताला ने उसकी औलाद में मर्द दिए, अगर अल्लाह ताला ने उसकी औलाद में मर्द दिए हैं, तो वो उन मर्दों की अच्छी तरबियत करे, उनको अल्लाह का बंदा बनाए, उनको अच्छे अखलाक वाला बनाए, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको दूसरों को अजियत पहुंचाने वाला मत बनाए। ठीक है ना, अपने बच्चों को ऐसा ना बनाए कि आपके बच्चे जो हैं, आपके बेटे जो हैं, वो जब बड़े हों तो वो भी वही हरकतें कर रहे हों जो कि आपके शौहर आपके साथ करते थे, या फलाना कोई मर्द जो है वो अपनी बीवी के साथ किया करता था, आपका बेटा बड़े होकर के वो हरकत ना करे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप कर सकती। ठीक है, तो इसको जो है वो समझें और इसके ऊपर फोन करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो। आप अलहमदुल्ला।